हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 11, जिसका शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् काचिदुपासना व्रजवधूवर्गीनया कल्पिता, श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालम् पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहं न जाने, करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्र सपुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबस्वा प्रीतमेतदेव गोविंद दामो धर्मादवीति। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकार विप्रात्वास कनकपिशं वैजन्तीं च मान्यं, रन्ध्रान् वेणु अदरसुदय पूर्णयोगोपवृन्दे, वृन्दारण्यं
स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम जो कि समस्त शास्त्रों का सार है, तो संसार के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनमें सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को वो समझाते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है काल यानी समय। क्योंकि ये समय यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो इस समय के द्वारा आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। इस समय के द्वारा यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो आप धन प्राप्त कर सकते हो, आप एजुकेशन प्राप्त करते हो, आप संसार की सुविधाएं प्राप्त करते हो। और यदि इसका वास्तविक सदुपयोग किया जाए तो आप इस समय को सही तरह से यूज करके भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि इसके ऑपोजिट देखा जाए तो चाहे आप अपने पूरे जीवन की साधना को दे दीजिए, चाहे अपने पूरे जीवन के एजुकेशन को या फिर ज्ञान को या फिर सारे जीवन के धन को भी दे दीजिए, लेकिन उसके द्वारा आप समय को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। जब भी किसी की मृत्यु आने वाली हो और यदि हम यमराज को बोलें कि भाई इसका समय समाप्त हो गया है लेकिन इसने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, वो सब आपको देते हैं, इसको 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो भागवत सप्ताह कर सके, तो क्या यमराज उसे छोड़ देंगे? नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है वो क्या है? समय है, जिसको जो कि अनमोल है, जिसको आप किसी कीमत पर भी नहीं खरीद सकते। तो इसी समय की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, क्योंकि ये समय ही है जिसका सदुपयोग करना इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसी समय का सदुपयोग करके परीक्षित महाराज ने केवल 7 दिनों में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी समय का वास्तविक सदुपयोग करके खटवांग महाराज ने 2.5 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। वही समय कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से परमाणु से यानी जो एटम है उससे किस तरह से यहाँ पर काल की गणना की जा रही है, बहुत ही सुंदर रीति से इसको समझाया जा रहा है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम गुरु और वरंगल से प्रार्थना करेंगे कि हम इसको समझ सकें और अपने समय का सही तरह से सदुपयोग कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि विदुर जी मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न करते हैं और उसमें काल के विषय में भी पूछते हैं, तो अब मैत्रेय मुनि उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। मैत्रेय उवाच, चरम सद्विशेषाणाम् अनेको संयुत सदा परमाणु सविज्ञेयो निरामैक्य ब्रह्मोयत। चरम सद्विशेषाणाम् अनेको संयुत सदा परमाणु सविज्ञेयो ऋणामयिका प्रमोयत। मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय ने कहा, चरम सत् विशेषाणाम, चरम अर्थात चरम सत् मना प्रभाव, विशेषाणाम यानी लक्षण, अनेक असंख्य असंयुत अर्थात अमिश्रित, सदा सदैव, परमाणु सविज्ञेयो, परमाणु मतलब छोटे से छोटा जो जर्रा होता है, एक एटम या मॉलिक्यूल जो छोटा सा होता है, सविज्ञेयो जानने योग्य निर्णय मनुष्य का, एक्य एकत्व, ब्रह्म यत ब्रह्मत यत जिससे, अनुवाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप के में निरूपित नहीं हो हुआ हो परमाणु कहलाता है। मतलब छोटे से छोटा जर्रा जिसको और छोटा ना किया जा सके, अविभाजित मतलब और उसको छोटा करना संभव ही ना हो उसको परमाणु कहते हैं। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण यानी लय के बाद भी, सब स्वरूप लय हो जाए मगर वो छोटा सा परमाणु सदैव अविभाजित विद्यमान रहता है। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। अभी जो हमारा शरीर है उसमें ऐसे करोड़ों छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, जर्रों से, तो लेकिन सामान्य मनुष्य इसको गलत ढंग से समझता है, इस शरीर को ही सब कुछ समझता है और इसी के लिए जीता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं, इन परमाणुओं का मिलन है, संयोजन है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। जैसे आज भी साइंस में बताते हैं ना, एक छोटा सा जर्रा होता है जिसको मॉलिक्यूल या शायद एटम कहा जाता है, उसको ना तोड़ा नहीं जाता, तो उसका और अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। कणाद ऋषि जो है वो भी इसको बहुत अच्छे से बताते हैं अपने जो उनका विज्ञान शास्त्र है उसमें। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतम अविभाजित कण माना जाता है जिससे यह ब्रह्मांड बना हुआ है। तो साइंस भी इस बात को मानती है कि एक छोटा सा जर्रा होता है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। श्रीमद् भागवतम ज्ञान के समस्त वर्णों की पूर्ण पाठ पुस्तक है जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण प्रकार का ज्ञान होता है, तो इसमें जो परमाणुवाद है वो भी बताया गया है। शाश्वत काल का क्षुद्र सूक्ष्म रूप परमाणु है, तो शाश्वत जो काल है वास्तव में उसका भी छोटे से छोटा जो रूप है वो क्या है, परमाणु है। इसी परमाणु के विषय में आगे बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, सत्य एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परमं महान् अविशेषो निरंतर। सत्य एव पदार्थस्य शब्दात् सत्य अर्थात प्रभावशाली अभिव्यक्ति का, ये सत्य है प्रभावशाली परमाणु है, एव निश्चय ही पदार्थ अर्थात भौतिक वस्तुओं का स्वरूप अवस्थितस्य अर्थात प्रलय काल तक एक ही रूप में रहने वाला है, उसका स्वरूप चेंज नहीं होता क्योंकि ना उसको विभाजित किया जा सकता है, तो वो आखिर तक ऐसा ही रहता है। यत्त कैवल्यम, यत्त मना जो, कैवल्य मतलब एकत्व, परम महान, परम है महान मतलब असीमित है, और अविशेष अर्थात स्वरूप निरंतर शाश्वत रीति से के अनुवाद देखिए, परमाणु अभिव्यक्त ब्रह्मांड की चरम अवस्था है, यानी ये ब्रह्मांड की चरम बेस है। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही स्वरूप में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। ये इन्हीं से मिलकर सारे शरीर बनते हैं, लेकिन जब वे विभिन्न शरीरों के निर्माण किए बिना अपने रूप में रहता है तो कैसा है? असीमित है, एकत्व कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे स्वरूप उन्हीं से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो स्वयं परमाणु जो स्वयं है पूर्ण अभिव्यक्ति है, एक पूर्ण एक कण है, उसका निर्माण करता है। आगे कहते हैं, तो ये परमाणु के विषय में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो काल है, तो काल के शरीरों की जो गतिशीलता है वो भी परमाणु के द्वारा मापी जा सकती है। क्योंकि पहले जमाने में ये समय के लिए वॉल क्लॉक्स वगैरह ये सब नहीं होते थे, लेकिन काल को नापने के लिए भी परमाणु को यूज़ किया जा सकता जाता था। तो वो कैसे होता था यहाँ पर समझाया जाएगा। वे कहते हैं, एवं कालोप्यनुमिता सूक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमा संस्थानुभुक्त्या भगवान् अव्यक्तो व्यक्तभूक् विभु। एवं कालो प्यनोमितः, एवं मना इस प्रकार, कालो अर्थात समय, अपि भी अनुमित यानी मापा हुआ। इस तरह से परमाणु के द्वारा काल को भी मापा जा सकता है। सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म में, तौलिये अर्थात स्थूल रूप में, च सत्तमा हे सर्वश्रेष्ठ, हे विदुर जी, इसी तरह से परमाणु के द्वारा हम काल को भी सूक्ष्म और स्थूल रूप में नाप सकते हैं। स्थानम भुक्त्या, स्थानम यानी परमाणुओं का संयोग जब वो मिलते हैं, भुक्त्या यानी गति द्वारा, भगवान, भगवान का मतलब होता है श्रीहरि, अव्यक्त यानी अप्रकट, व्यक्त भुक् अर्थात समस्त भौतिक गति को नियंत्रित करने वाला, विभु यानी महान बलवान, वो भगवान जो अप्रकट है, लेकिन अप्रकट होते हुए भी संपूर्ण भौतिक गतिनिधियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वो महान भगवान इस काल को भी अपने नियंत्रण में रख रहा है। और उसको कैसे करते हैं भगवान, किस तरह से काल को कंट्रोल करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, एवं कालोप्यनुमितः, एवं यानी काल को जो समय है उसको शरीरों के परमाणविक संयोग की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान हरि की शक्ति है। ये काल क्या है? भगवान की शक्ति है। और जो समस्त भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, और काल के द्वारा भगवान पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कालोक्ष्मी लोक क्षया कृत, मैं ही काल बनकर आता हूँ और संपूर्ण लोकों को क्षय कर देता हूँ। इस काल तो ऐसा है जो हमको पता ही नहीं होने देता कि किस तरह से हमारा नाश हो रहा है। हम देखें तो आज से 20 साल पहले हमारा शरीर कैसा था, है ना? बिल्कुल अलग से हम दिखते थे, छोटे दिखते थे, यंग दिखते थे। और जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा है, काल बीत रहा है, तो हम दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण हमारा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, हम क्षीण होते जा रहे हैं। तो ये काल, जो काल क्या है, भगवान की सर्वशक्तिमान शक्तिमान भगवान की शक्ति है, और इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु जो है वो क्षीण होती जा रही है। वो भगवान जो इस भौतिक गति का नियंत्रण करते हैं, जबकि वो दिखते भी नहीं है, है ना, भगवान अव्यक्त व्यक्त भोग विभो अव्यक्त है, अव्यक्त है अर्थात दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन फिर भी वही संपूर्ण सृष्टि को काल के द्वारा कंट्रोल किए हुए हैं। आगे में त्रिमुनि कहते हैं, सकाल परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेष मुख्यस्तु सकालः परमो महान्। सकाल, स मतलब वही, काल मना नित्य काल, परमाणु अर्थात प्रमाणविक, वै निश्चय ही, यो भुङ्क्ते परमाणुता, यो मना जो, भुङ्क्ते मना गुजरता है, परमाणुताम अर्थात एक परमाणु का अवकाश, जब एक परमाणु का अवकाश गुजरता है, सत्तह अर्थात संपूर्ण समुच्चय, अविशेष भूक अर्थात अद्वैत प्रदर्शन से गुजरने वाला यह तू जो, सह वह काल परम महान, काल अर्थात काल यानी समय, परम अर्थात परम, महान मतलब बहुत महान है। अनुवाद, परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। तो परमाणु से काल को कैसे नापा जाता है, उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह काल जो परमाणुओं के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। यहाँ पर महाकाल के विषय में बताया जा रहा है कि वो काल जो परमाणुओं के व्यक्त समुच्चय यानी कि जो परमाणुओं को प्रच्छन्न कर देता है, बिखर देता है, वो महाकाल है। और श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि काल तथा अवकाश यानी दिक दो सह संबंधी पद हैं। काल या अवकाश जो है वो एक जैसे पद हैं। अणुओं के कतिपय अवकाश को तय करने के रूप में काल मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, जैसे अणुओं के जो अवकाश हैं, अणु जो है यानी छोटे से छोटा जो जर्रा है, परमाणु जो है वो किस तरह से अपने सफर को तय कर रहा है, उसी से हम समय को माप सकते हैं। मानक काल की गणना सूर्य की गति के अनुसार की जाती है। एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है। तो कैसे मापते हैं, जैसे मानक काल यानी मनुष्यों के जो समय है उसको कैसे मापा जाता है, सूर्य की गति के अनुसार। जितना जितना सूर्य, जैसे सूर्य को देखकर पहले समय मापा जाता था कि इस समय इतना समय हो रहा होगा, तो एक परमाणु को पार करने में सूर्य जितना काल लेता है, एक परमाणु यानी छोटा सा जो जर्रा है उसको क्रॉस करने में सूर्य जितना समय लेता है, वह परमाणु काल के रूप में परिगणित किया जाता है, उसको परमाणु काल कहा जाता है। तो सबसे महान काल अद्वैत अभिव्यक्ति के समग्र अस्तित्व को व्याप्त करता है। सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और आकाश को तय करते हैं, और अवकाश परमाणुओं के रूप में परिगणित किया जाता है। सारे जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसी से पता चलता है समय के विषय में या काल के विषय में। तो प्रत्येक ग्रह के चक्कर लगाने की अपनी विशिष्ट कक्षा होती है, अपना अपना ऑर्बिट होता है, जिसमें वह बिना इधर उधर हटे गति करता रहता है। उसी तरह सूर्य की अपनी कक्षा है, प्रकृति के सृजन पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना समस्त ग्रहों की गति की गणना के आधार पर तब तक की जाती है जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं हो जाता, इसे परम काल कहते हैं। तो परम काल किसको कहते हैं? जितने भी लोक हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, और जिसमें वो इधर उधर नहीं जाते, उसी के अंदर का मतलब चक्कर लगा रहे होते हैं। तो उसी तरह सूर्य की भी एक कक्षा है, तो प्रकृति के सृजन पालन तथा संहार के काल की संपूर्ण गणना किससे हो रही होती है? ग्रहों की गति की गणना के आधार पर, कि किस तरह से ग्रह, तो ये सारे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं भगवान, और जब इनकी पूरी हो जाता है, इनका पूरा ये चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो जब तक कि सृष्टि का अंत नहीं होता है तब तक वो होता रहता है, और अंत जब होता है तो उसको परम काल कहते हैं, जब इनके सारे जो और ग्रह हैं उनका नाश हो जाता है। आगे कहते हैं मैत्री इस श्लोक नंबर 5 में मैत्री मुनि ये बता रहे हैं कि किस तरह से परमाणु के द्वारा काल को हम समझ सकते हैं, कि परमाणु को किस तरह से काल की गणना के लिए यूज किया जा सकता है। वे कहते हैं अणु दो परमाणु स्यात् त्रिसरेणुस्त्रय स्मृता जालार्करश्म्यवगत खमीवानु पतन्नगात। अणु दो परमाणु, अणु मन द्विगुण परमाणु, द्वव यानी दो, जो द्विगुण यानी कि अणु मतलब जब दो परमाणु मिलते हैं, परमाणु यानी परमाणु स्यात् बनते हैं, और त्रिसरेणु यानी षट परमाणु, छह परमाणु जब मिलते हैं, त्रय यानी तीन, स्मृता विचार किया हुआ, जाल अर्क अर्थात खिड़की के पर्दे से छेदों से होकर धूप को रश्मिन अर्थात किरणों द्वारा अवगत यानी जाना जा सकता है, खम एव आकाश की ओर, अनुपतन यानी अगात ऊपर जाते हैं। इस अनुवाद को देखिए, स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है, कैसे? दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु यानी अणु बनाते हैं, अणु दो परमाणु स्यात्। तो यानी दो जब परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनता है, और तीन द्विगुण परमाणु यानी अणु जो हैं वो एक षट परमाणु बनाते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य प्रकाश में दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर षट परमाणु यानी जैसे परमाणु होता है वो तो बिल्कुल छोटा होता है, वो तो दिखता ही नहीं है, तो दो जब मिलते हैं तो क्या होता है? एक अणु बनता है, और ऐसे तीन अणु जब मिलते हैं तो ये षट परमाणु बनता है, और उसको हम आसानी से खिड़की के पर्दे से उड़ता हुआ देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते परमाणु का वर्णन अदृश्य कण के रूप में किया जाता है, यानी जो परमाणु होता है वो तो दिखता नहीं है, किंतु जब ऐसे छह कण परस्पर मिलते हैं तो वे त्रिसरेणु कहलाते हैं, और इन्हें खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर आने वाली धूप में देखा जा सकता है। आगे इसी बात को आगे बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं अब इन्हीं परमाणु ये जो समय बना है उससे समय को कैसे नाप रहे हैं उसको बता रहे हैं। वो कहते हैं त्रिसरेणु त्रिकम्भुंते यः कालस्य त्रुटी स्मृता शतभागस्तु वेदस्यात् त्रयस्त्रीभिस्तुलवस्मृता। शब्दार्थ त्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते। त्रसरेणु त्रिकम अर्थात तीन षट प्रमाणों का संयोग, षट प्रमाण थे ना, वो जब तीन मिलते हैं भुंक्ते, जब वे संयुक्त होते हैं। यह काल सत्रुटि स्मृता, यह जो काल यानी काल की अवधि स वह त्रुटि स्मृता कहलाती है। जब तीन षट प्रमाण मिलते हैं तो एक त्रुटि बनता है। शत भाग एक सौ त्रुटियां, जब एक सौ त्रुटि मिलती है तो वेद, वेद नाम से स्यात् यदि ऐसा होता है तो। तय यानी उनके द्वारा त्रिभि तीन गुना, तो लेकिन लव स्मृता जब तीन गुना त्रुटि मिलती है, देखो और एक सौ त्रुटियां एक वेद कहती है, और जब तीन वेद मिल जाते हैं तो एक लव बनता है। हम बोलते हैं ना लव मात्र साधु संग, लव कितना होता है उसके विषय में यहां पर बताया जाता है कि तीन त्रसरेणुओं के समुच्चयन में जितना समय लगता है। त्रसरेणु क्या है, पहले जो हमने पढ़ा कि एक षट परमाणु जब बनता है तो यह षट परमाणु उस सूर्य आकाश के दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे से छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जाता है कि षट परमाणु आकाश की ओर से ऊपर आता है, उसको क्या कहते हैं, त्रसरेणु कहलाता है। किसको, परमाणु जो जब छह कण आपस में मिलते हैं तो एक त्रसरणु बनता है, और त्रसरणु तीन त्रसरणुओं के जब मिलन होता है उसके समुच्चयन में जितना समय लगता है वो त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटियों का जब मिलन होता है तो एक वेद बनता है, और तीन वेद जब मिलते हैं तो एक लव बनता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये गणना की गई है कि यदि एक सेकेंड के 16,087.5 भाग किए जाए तो हर भाग एक त्रुटि की अवधि होता है। अब एक सेकेंड को भी यदि 16,087 टाइम उसको डिवाइड किया जाए तो फिर एक भाग एक त्रुटि कहलाता है, जो कि 18 परमाणु कणों के समुच्चयन का काल है। विभिन्न पिंडों में परमाणुओं का ऐसा समुच्चयन भौतिक काल की गणना को जन्म देता है। इन विभिन्न अवधियों की गणना के लिए सूर्य केंद्र बिंदु है। तो ये सिर्फ समय को किस तरह से मापा जाता है उसके विषय में बताया जा रहा है, और आगे चल के इसको बहुत सीरीज में स्लैस करके श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे। तो जैसा लिखा है हम ऐसा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे कहते हैं निमेश स्त्री लवो के आमनातस्ते त्रय क्षण क्षणान पंच विदु काष्ठा लघुता दश पंचयात। निमेश, निमेश नामक काल का की अवधि, निमेश किसको बोलते हैं उसके विषय में बताया जाता है। त्रिलव तीन लवों की अवधि, जब जो लव है वो तीन हो जाते हैं तो उसको एक निमेश कहा जाता है, ये यानी जानी चाहिए। और आमनात अर्थात ऐसा कहलाता है, ते त्रया तीन क्षण, तीन जब वो निमेश होते हैं तो क्षण बनता है। क्षणान पंच विदु, क्षणान मना ऐसे क्षण, पंच मना पांच, विदु मना समझना चाहिए, काष्ठम यानी काष्ठा नामक कालवाद काल अवधि, काष्ठा उसको कहते हैं, और लघु, लघु नामक काल अवधि, तो ता दश, ता मना वे दश पंच अर्थात पंद्रह, च भी दश पंच दश मन टेन पंच मन पांच, जब पांच लघु बीतते हैं तो सॉरी जब पंद्रह काष्ठा मिलते हैं तो उसको एक लघु कहा जाता है। अनुवाद देखिए, तीन लवों की काला अवधि एक निमेश के तुल्य है, तीन निमेश मिलकर एक क्षण बनते हैं, पांच क्षण मिलकर एक काष्ठा बनते हैं और पंद्रह काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गणना से ज्ञात होता है कि लघु दो मिनट के तुल्य है। लघु बना ना भी, अभी कितना छोटे से होकर आगे आए हैं और दो मिनट एक लघु होता है। वैदिक विद्या के रूप में काल की परमाण्विक गणना को समझने के लिए इसी आधार पर वर्तमान समय में परिणित किया जा सकता है। इसीलिए देखो छोटे छोटा जो समय होता है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मुहूर्त निकाला जाता है कि ये शुभ मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त है। जो ब्राह्मण होते हैं वो कुंडलियाँ उस समय निकाल के देते हैं, भाई इस समय हमको ये कार्य करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये चंद्र और सूर्य और सारे ग्रह जो होते हैं वो कार्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए पूछा जाता है भाई मेरे कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए कौन सा समय जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन ये सब समय जो है वो सारा का सारा हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है, सॉरी जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे कितना ही शुभ समय हो, यदि वो भगवान के नाम में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता तो वो प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन यदि चाहे हमारे जीवन का समय कितना ही दुर्भाग्यशाली हो, लेकिन यदि उसमें हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, भागवत अथवा श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करते हैं, तो वो चाहे कैसा भी समय हो हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं, लघुनि वै समाम्नाता दश पंच चनाडिका ते द्वै मुहूर्त प्रहर षड्यामः सप्तवाणिणाम्। लघुनि वे समाम्नाता, लघुनि मतलब ऐसे लघु, प्रत्येक दो मिनट जो होते हैं, वह सही सही समाम्नाता यानी कहलाता है दश पंच यानी पंद्रह च नाडिका, एक नाडिका, नाडिक्या ते द्वय मुहूर्त प्रहर, ते मतलब उनमें से, द्वय अर्थात दो, मुहूर्त यानी क्षण, प्रहर तीन घंटे, षड च याम अर्थात दिन या रात का चौथाई भाग, सप्तवा नृणाम सप्तमना सात वामना अथवा नृणामन मनुष्य की गणना का। तो आगे इसका अर्थ ये है कि पंद्रह लघु मिलकर एक नाड़ी का बनाते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। दो दंड से एक मुहूर्त बनता है और मानवीय गणना के अनुसार छः या सात दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनता है। तो ये जो दंड है मतलब ये जो समय है जो हमारा दिन होता है उसका चौथा भाग होता है। उसके बाद आगे बताते हैं द्वादशार्ध पलोन्मानम चतुर्भिश्च तुरंगुले स्वर्णमाशय कृतच्छत्रम यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। द्वादशार्ध अर्थात छः, द्वादश कहते हैं बारह को, अर्ध मतलब आधा, बारह का आधा यानी छः, पल यानी भार की माप, अनमानम अर्थात माप पात्र मानना, चतुर्भी चार के बाहर के बराबर और चतु अंगुले यानी चार उंगली का माप स्वर्ण सोने के कोश यानी बाहर का कृत छिद्रम यानी छेद बनाकर यावत जितना प्रस्थ अर्थात एक प्रस्थ के जितना जल पुलुतम अर्थात जल से भरा हो। अब इसको कैसे नाप रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। वे कहते एक नाड़ी का या दंड के मापने का पात्र छह पल यानी भार 14 औंस वाले जो 14 औंस वाला ताम्र पात्र, ताम्र मतलब तांबे का पात्र मतलब एक प्लेट हो, उससे तैयार किया जाता है और जिसमें चार माशा भार वाले तथा चार उंगल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। अब उसको नापने का तरीका ये है कि एक प्लेट में चार उंगल लंबी सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जितना समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। तो देखते होंगे कितना समय लगा उसको एक दंड। अभी पहले वॉच तो होते नहीं थे ना, तो इसी तरह से समय नापते होंगे। हम लोग कैसे बोलते हैं, सेकेंड्स हैं, मिनट्स हैं, इस तरह से देखते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, दंड है, नाटिका है, लघु है, तो उसको किस तरह से नापते हैं वो बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ ये सलाह दी जाती है कि तांबे के मापक पात्र में जो छेद बनाया जाए वह छेद चार माशा से अधिक भार वाली तथा चार उंगल से अधिक लंबी सलाई से ना बनाया जाए, जिससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है, ये शायद ना जो है बाय मिस्टेक आया है, इसमें लिखा हुआ है उससे बनाना चाहिए। और देखो लिखा हुआ है ना, जिसमें चार माशा भार वाले तथा चार उंगल लंबे सोने की सलाई से एक छेद बनाया जाता है, तो इससे छेद का व्यास सही रहता है। इस पात्र को जल में रखा जाता है, उसके ऊपर तक भर जाने का समय दंड कहलाता है। दंड की अवधि मापने की यह दूसरी विधि है। जिस तरह के कांच के पात्र में बालू से समय मापा जाता है, अब एक कांच का पात्र होता है ना, कांच का, उसमें रेती डाली जाती है और रेती जितने जितने समय तक नीचे गिरती है ना, उससे भी समय नापा जाता है। आजकल भी ऐसा होता है, मतलब ये जो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी ऐसा होता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता के दिनों में भौतिकी रसायन शास्त्र या उच्चतर गणित का अभाव न था। यानी ऐसा नहीं था कि पहले समय को बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, दिन ऐसे ही गुजर जाता था। कोई सोचता 9 बजे उठो, कोई सोचता है 11 बजे उठो, कोई सोचता भाई समय टाइम तो था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, एक एक क्षण का हिसाब रखते थे। मापों की गणना सरल से सरल रूप में अनेक विधियों से की जाती है, तो अलग अलग तरीके से भी नापा जाता था। तो ये तो बहुत सूक्ष्म समय था। अब मैत्रेय मुनि अब हमारे जो हम मनुष्यों के दिनों की गणना है उसके विषय में बताते हैं कि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर मतलब दिन के समय के होते हैं और 4 प्रहर रात के समय के होते हैं। और उस तरह से जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो एक पक्ष बनता है, जैसे एक शुक्ल पक्ष बनता है जब सूर्य आगे बढ़ रहा होता है, और जब चंद्रमा जो है वो बढ़ रहा होता है तो शुक्ल पक्ष है, और जब घट रहा होता है तो कृष्ण पक्ष है। उसको समझाते हुए कहते हैं यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यमाना महान्युभे पक्ष पंच दशाहानी शुक्ल शुक्लः कृष्णश्च मानदा यामाश्चत्वार, यामा मतलब तीन घंटे, चत्वार अर्थात चार, चत्वार तथा चार मर्त्यमान यानी मनुष्यों के, यहाँ पर मनुष्यों को मर्त्यमान कहा जाता है, मतलब उनके पास समय कितना होता है उसको पता ही नहीं है, कभी भी मर सकता है, इसलिए मनुष्यों को मर्त्यमान कहा जाता है कि किसी ये छोटा सा समय ना, लघु मात्र या फिर जो लव मात्र क्षण, किसी भी टाइम पर एक क्षण में प्राण निकल सकता है, तो इसलिए कहा जाता है यामश्चत्वार चत्वारो मर्त्यमान महनि उभे, और पक्ष पंचादशाहानि, पक्ष यानी पखवारा, पंचदशा यानी पंद्रह, अहानि यानी दिन, पंद्रह दिन का एक पक्ष बनता है, शुक्ल कृष्णश्च मानदा, शुक्ल अर्थात उजाला, कृष्ण यानी अंधेरा, च भी मानदा यानी मापा हुआ है। अनुवाद, यह भी गणना की जाती है कि मनुष्य के दिन में चार पहर या याम होते हैं और रात में भी चार पहर होते हैं, एक पहर में तीन घंटे होते हैं और चार पहर में बारह घंटे होते हैं, एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं, तो बारह घंटे दिन के और बारह घंटे रात के होते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यह भी गणना की जाती है कि मनुष्य के दिन में चार पहर या याम होते हैं और रात में भी चार पहर होते हैं, इसी तरह पंद्रह दिन तथा पंद्रह रातें पखवाड़ा कहलाती हैं, पखवाड़ा या पक्ष, और एक मास में दो पखवाड़े या पक्ष यानी उजाला शुक्ल तथा अंधेरा कृष्ण, जैसे हमारी दो एकादशियां होती है ना, एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है, तो एक पखवाड़े में या पक्ष में एक एकादशी होती है। आगे बताते हैं कि जब दो पक्ष मिल जाते तो एक महीना बनता है, यानी पंद्रह पंद्रह दिन का एक महीना होता है, और उसके बाद जब दो महीने मिलते हैं तो एक ऋतु बनती है, जैसे साल में बारह महीने होते हैं तो छः ऋतुएं होती हैं, और छः महीने मिलते हैं दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति बनती है, उसके विषय में कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, तयो सामोष्ययो मास पितृणाम तदहर्निशम द्वौतावृतो षट्यानम दक्षिणं चोत्तरं दिवि। तयो समुचो, तयो मतलब उनके, समुच यानी योग, मास, मास यानी महीना, जब दो दो पक्ष होते हैं तो एक महीना बनता है, पितृणाम यानी पितहलोक का, तत् वह यानी मास, अहनिश दिन तथा रात, दो यानी दोनों, तव यानी महीने, और आगे ऋतु यानी जब दो महीने होते हैं तो एक ऋतु बनती है, षट अयम, षट मना छ, अयम मना छ महीनों में सूर्य की गति, दक्षिणम अर्थात दक्षिणी, च उत्तरम यानी उत्तरी, देवी यानी स्वर्ग में। अनुवाद देखिए, दो पक्षों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पिता लोकों का पूरा एक दिन तथा रात है, ऐसे दो मास मिलकर एक ऋतु बनती है और छः महीने मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। इस तरह से सूर्य जब एक दक्षिण से उत्तर तक पहुंचता है तो छः महीने, और फिर छः महीने में पुनः अपनी यात्रा को कंप्लीट करता है। श्लोक नंबर 12 में मैत्रेय मुनि बताते हैं, अब मनुष्यों के समय की बताई, अभी देवताओं के समय के बारे में बता रहे हैं, आयनी चाहनी प्राहुर वत्सरो द्वादश स्मृता संवत्सर शतम निर्णाम परमायुर् निरूपितम्। अयने चाहने प्राहुर, अयने अर्थात सूर्य की गति। सूर्य की गति कैसे होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर 6 मास में, इसको अयने कहते हैं, उसको सौर गति कहते हैं, सूर्य की गति को अयने। च तथा अहनी यानी देवताओं का दिन प्राहु कहलाता है, तो 6 महीने का देवताओं का एक दिन कहलाता है। वत्सरा एक पांचांग यानी वर्ष, द्वादश अर्थात 12 महीने, तो 12 महीने का एक पांचांग होता है, टिप्पणा होता है ना 12 महीने का, उसमें बताया जाता है, स्मृत ऐसा कहलाता है। संवत्सरा यानी शतम यानी 100 वर्ष, निर्णाम, निर्णाम यानी मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की भगवान की ओर से दी गई है, और परम आयु यानी जीवन की अवधि यानी उम्र निरूपितम यानी अनुमानित की जाती है, बताया जाता है। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, 2 सौर गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं, और दिन रात का यह संयोग मनुष्यों के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। अब अगर देखा जाए तो मनुष्यों के पास 100 वर्ष की आयु होती है, जिसको अगर कंक्लूजन किया जाए तो उसमें से आधी आयु जो है वो सोने में गुजरती है ना, आधा समय जो है मनुष्य सोने में दे देता है, और बाकी जो बचा मतलब 100 में से 50 गए, बाकी 50 बचे। अब 50 में से 25 वर्ष जो होते हैं वो शुरू के जो 10 साल होते हैं वो तो बिल्कुल मनुष्य को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, क्या अभी डिसीजन ही नहीं लिया होता है, ठीक है। पहले के 5 साल बिल्कुल बचपन में चले जाते हैं, उसके बाद स्टडीज़ में 20-25 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, वो कभी एग्ज़ाम्स हैं, कभी क्या है, कभी क्या है, शिक्षा लेने में गुजर जाते हैं, 25 साल गुजार दिए तो सोचेंगे कि भाई 25 साल गुजर गया, अब तो विवाह करना है, विवाह करके फिर उसके बाद तो ना अपनी पत्नी को समय देना है, अपने बच्चों को समय देना है, उनकी स्टडी करानी है, और फिर वो करते करते 50 साल गुजर जाते हैं। इसी में समय ऐसे नहीं होगा कि कोई समय ऐसा आएगा कि ये समय बिल्कुल फ्री है, आप इसमें बैठ के भक्ति करो, नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, भले भगवान ने हमको 100 साल की आयु दी है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हम 100 साल तक जिएंगे, इसलिए हर समय हमको इस तरह से बिताना है, अपने एक दिन में ऐसा एक मैनेजमेंट करना है कि हमको किस तरह से समय का सदुपयोग करना, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, और बाकी जो भी हम करते हैं, जितना भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, संबंध होते हैं, वस्तुएं होती हैं, सब छोड़ के जानिए, जो लेके जाना है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ जो हमने समय बिताया है, जो नाम जप में, जो श्रवण करने में समय बिताया, बस वही लेके जाना। तो इस बात की गारंटी है कि सफ़र यहाँ से जाना तो है ही, तो जब जाना ही है तो फिर हमें पैकिंग हमेशा बना के रखनी चाहिए अपना। जैसे कभी कभी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, कि भाई हमें घर वाले बोलते कि 3 बजे निकलना है, तो हम सुबह से 2 बजे 1 बजे से ही हम पैकिंग कंप्लीट कर देते, ताकि किसी भी टाइम पर हमको निकलना हो तो हमारी सारी चीज़ें पैक रहें, तो ताकि कोई चीज़ रह न जाए। उसी तरह से जाना तो है, ये तो गारंटीड है। इस संसार में आप किसी और चीज़ पर यकीन करो या ना करो, भगवान और भक्ति पर यकीन करो ना करो, लेकिन एक बात पर तो जो नास्तिक है ना उनको भी यकीन करना पड़ता है कि एक न एक दिन संसार से जाना है, तो जाना ही है। तो इस संसार की कोई वस्तु तो लेके जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कोई अपना एजुकेशन लेके जाए, कोई अपना धन लेकर जाए, कोई अपना सौंदर्य लेके जाए, सब यहीं छोड़ के जाना है। लेके तो भगवान का नाम ही लेना, तो उसकी पैकिंग रखनी चाहिए, वो पार्सल बना रहना चाहिए, सुबह उठकर ही अपना नाम जप और श्रवण कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि किसी भी टाइम पर यमदूत आए तो अपने हरि नाम की पोटली को हम साथ लेके जा सकें। आगे मैत्रेय मुनि एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, जो भी समय है, जो कुछ भी है, वो सब भगवान के नियंत्रण में, भगवान के कंट्रोल में कार्य करता है। उसके विषय में कहते हैं श्लोक नंबर 13 में, ग्रह ग्रह क्षतारा चक्रस्थ परमाणवा देना जगत संवत्सरा वसानेन परीत्यनिमिषो विभु। ग्रह अर्थात प्रभावशाली ग्रह तथा चंद्रमा, ऋक्ष अर्थात अश्वनी जैसे तारे, तारा यानी तारा, चक्रस्थ अर्थात कक्षा, परमाणु आदिना अर्थात परमाणु सहित जगत यानी संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, संवत्सरा अवसानेन एक वर्ष के अंत होने पर, परियति अपनी कक्षा पूरी करते हैं, अनिमशः अर्थात नित्य काल, विभु यानी सर्वशक्तिमान। अनुवाद, सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु पर परब्रह्म के प्रतिनिधि दिव्य काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सूर्य परमेश्वर की आंख है और यह काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। उसी तरह सूर्य से लेकर परमाणु तक सारे पिंड काल चक्र के वशीभूत हैं और इनमें से हर एक का एक संवत्सर का नियमित चक्र काल है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि कुछ भी हो, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, वो सब भगवान के ही प्रतिनिधि यानी काल के निर्देशानुसार अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो यदि ये सब भगवान के ही नियंत्रण में है, तो भगवान के भक्तों को किसी भी ग्रह, किसी भी काल, किसी भी वस्तु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब उसी पर प्रभाव करते हैं जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, जो भगवान की शरण में है, जो अपने समय को भगवान के लिए यूज करते हैं, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। काल या किसी भी ग्रह का इतना वो दुस्साहस नहीं हो सकता कि वो भगवान के भक्तों को किसी प्रकार से परेशान करे, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो हमें इन सब से भयभीत नहीं होना चाहिए कि कोई काल है, कोई ग्रह है, कोई भूत है, कोई आत्मा है, ये सब उन्हीं के लिए दुष्प्रभावित हो सकते हैं जो कि भगवान की शरण में नहीं आते। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखना चाहिए और अपने इस बहुत ही कीमती मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान को याद रखना चाहिए। यही एक नियम है। वैसे तो वेदों और शास्त्रों में बहुत सारे विधि निषेध बताए गए हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वविद्धि निषेदास्यो एतयोरेव किंकर। बाकी जो कुछ भी शास्त्र में विधियां बताई गई हैं, जो कुछ भी बताया गया है, वो सब इन दो विधि के किंकर है, यानी उनके गुलाम है, उनकी दास है। क्या दो विधियां? स्मृतव्यम सततम विष्णु, हर क्षण हर समय भगवान को स्मरण करना है, और दूसरी क्या? विस्मर्तव्यो न जातुचित, एक क्षण भी ऐसा नहीं हो जिसमें हम भगवान को भूल जाएं। ये एक ही बात है, हर एक क्षण भगवान को याद करना है और किसी क्षण भगवान को भूलना नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझो कि हमने हर एक शास्त्र के प्रत्येक आदेश का पालन कर लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके यहाँ समक्ष एक ही विनती करती हूँ कि कृपया मुझे अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। भगवान से, गुरु और गौरंग से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।